آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
سامعین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام عباس صاحب۔ غلام عباس صاحب، تقریباً 37 برس ناردرن ٹیریٹری پولیس کو دینے کے بعد جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ غلام عباس صاحب کا یہ سفر کیسے شروع ہوا، کس طرح سے انہوں نے 37 برس پولیس کی سروس میں گزارے، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ایک امیگرینٹ کے طور پر ان کا یہ سفر کیسے رہا، یہ بھی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ غلام عباس صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سفر ہے آپ کا وہ کس طرح سے شروع ہوا، اور یہ اتنا طویل سفر جو تھا وہ کیسا رہا؟
جی بہت شکریہ۔ لیٹ پچھلی صدی کی بات ہے، ہاں 1987، تو میرے کزن بھی ہیں، برادر بھی ہیں آسٹریلیا میں، انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا۔ میری جو گھر والی ہے ان کو، مجھے ساتھ میں بیٹا میرے بلال، تو 9th of 9th 87، that was the time، اس 9 September 87 کو ہم وہاں پہ پہنچے ہیں آسٹریلیا میں۔ تو جاب ان دنوں میں، جاب کا بھی کچھ زیادہ، ایک تو لینگویج بیریئر تھا تھوڑا، تو دوسرا جو میرا یہاں کے جو کوالیفیکیشن تھی، آئی یوز ٹو بی سب انجینئر الیکٹریکل، تو وہاں پہ کچھ ان کا جو ریکوائرمنٹس ہیں لوکل کی، وہ ہوتا تھا کہ آپ ٹریننگ کریں، ری کوالیفائی کریں اپنے ٹریڈ میں، تو تب آپ کو جا کے جاب کی آفر ہوتی تھی۔ تو ان دنوں میں کچھ مہینے بے روزگار رہنے کے بعد، الحمدللہ میرے جو بھائی صاحب ہیں وہاں پہ، انہوں نے مجھے وہ ایک پیس آف پیپر تھا، نیوز پیپر کا ایک ایڈ تھی، تو اس میں لنچ یا سینڈوچ وہ ختم کرنے کے بعد وہ دیکھ رہے تھے، تو کہنے لگے یار یہ پولیس میں جاب دائیں ہیں۔ تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا انکریجمنٹ کے طور پہ کہ جو دوسرے کلچر سے لوگ ہیں ان کو ہم پریفر کریں گے لینے۔ تو آئی اپلائیڈ، فزیکل ٹیسٹ، تھیوری ٹیسٹ جو ریٹن ہوتے ہیں کچھ ایگزام وغیرہ، وہ ٹھیک ہو گئے، انٹرویو ٹھیک ہو گیا، اور جولائی میں 11th of July آئی اسٹارٹڈ مائی ٹریننگ۔ تو الحمد للہ تب سے پھر وہ المیہ نے ایک رزق کا وسیلہ بنا رکھا تھا، اچھا وقت گزرا ہے، 37.5 years، 37 سال 6 مہینے اور شاید 3 دن۔ جی، دس از ہاؤ آئی بیکیم اے پولیس مین ہیئر۔
سفر کہاں سے شروع کیا، کس رینک پہ بھرتی ہوئے، کب ریٹائر ہوئے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے۔
جی، میں ایز اے کانسٹیبل بھرتی ہوا تھا اور ریٹائر ہوا ہوں، سینئر کانسٹیبل فرسٹ کلاس ایک ہوتا ہے رینک، اس پہ ریٹائر ہوا ہوں، اور ایک ہی شہر میں، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، داون سے باہر نہیں گیا میں، داون میں ایک ہی شہر میں، بلکہ دو مختلف تھانے تھے، ایک میں 12 سال، دوسرا تھانہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوا تو وہاں پہ 25 سال اور کچھ مہینے۔ سو دس از ہاؤ آئی اسپینڈ 37 years ان دا سیم سٹی۔
یہ بتائیے گا، بینگ اے پاکستانی، آپ وہاں سے امیگریٹ کر کے آسٹریلیا آئے اور آسٹریلیا میں آ کے آپ نے پولیس سروس کی، یہ جو آپ جس وقت کے آسٹریلیا کی آپ بات بتا رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ خاص طور پر ساؤتھ ایشین کمیونٹی کم تھی یہاں پہ، اس بارے میں بھی آپ تھوڑا بتائیے گا کہ کیا تجربہ تھا آپ کا؟
جی، ایکچولی ہم پرتھ میں آئے تھے، وہاں پہ ہمارے دو بہن بھائیاں وہ آ رہے تھے واپس، ہماری شیرا جو ہیں سالی صاحبہ، ان کے خاون، تو ایک مہینہ وہاں پہ گزارا، بگر سٹی تھا تو ہمیں اتنا انوالومنٹ نہیں تھی کمیونٹی کے ساتھ۔ پھر ہم ڈاون آ گئے، تو جو کہ چھوٹا سا شہر ہے ڈاون، ابھی بھی کچھ زیادہ پاپولیٹڈ نہیں ہے، تو تب وہاں پہ پاکستانی تقریباً میرے خیال میں میکسیمم 5 families تھیں، تو کہہ لیں کہ نمبر بٹوین سے اراؤنڈ 60-70 میکس، یہ حالت تھی۔ اور اب ماشاء اللہ وہاں پہ ہزاروں میں ہیں پاکستانی ہمارے شہر میں، تو پورے آسٹریلیا میں تو آپ ملٹیپلائی کر لیں اسی ریشیو سے۔
یہ بتائیے گا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہماری طرف ہوتا ہے کہ لوگ اکثر آتے ہیں کچھ سفارش وغیرہ لے کے، یا کوئی اپنی کمیونٹی کے لوگ اپروچ کرتے ہیں آپ کو، اس بارے میں بتائیے گا کہ کیونکہ یہ چیزیں پولیس سے بڑی مجابقت رکھتی ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ یا کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے تو وہ ضرور بتائیں ہمارے سامعین کو۔
बड़ी मजेदार सिचुएशन होती है, जो हमारे नए दोस्त यहाँ से जाते हैं ना, वही कुछ ना कुछ कहीं पे वो रह जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना उन्हें समझ आ जाती है कि यहाँ पे पुलिस वाला कानून के अलावा आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। तो ज्यादातर जो है ना वो ट्रैफिक के मामला होते हैं, हमारे यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो रेंट ए कार वगैरह या जो उबर और चलाते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ वायलेशन। तो ज्यादा कॉल जो होती थी वो ये होती थी कि मुझसे ये हो गया तो उसका फाइन क्या होगा, तो कोई बच बचा नहीं हो सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाते थे कि यहाँ पे नहीं, उनको जो लीगल गाइडेंस चाहिए होती थी वो उनको मैं देता रहा हूँ, आज तक होता है। बल्कि यहाँ भी आ गए हैं तो पीछे से कोई ना कोई भाई या अपना कोई जवान फोन कर लेता है कि ये है तो मैं क्या करूँ। तो इट्स जस्ट लाइक, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, ये ऐसे सवाल होते हैं, कोई भी बंदा मुझसे नॉन पाकिस्तानी भी पूछेगा तो मैं बाउंड हूं उसको भी जवाब देने के कि इसका ये कर सकते हैं आप, इसका सोल्यूशन क्या है। सो एस सच जो होता है ना, बड़ी सिफारिश की यार मेरा ये काम करो आधे, ना ना, और नहीं वो नहीं, वो कहते भी नहीं, और अच्छी बात है वो नहीं कहते क्योंकि हम इनकार कर देंगे तो उनका दिल दुखेगा। हाँ
तो ये बताइएगा कि आपने दोनों, जैसे आपने बताया कि आपके वालिद साहब जो थे वो यहाँ पे पाकिस्तान पुलिस में भी थे, तो
जी
दोनों
जी
पुलिस का आपने जो है ना एक सिस्टम देखा है, बड़ा उसका करीबी से मुशाहिदा किया है, तो इन दोनों सिस्टम्स को आप कैसे देखते हैं? क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो यहाँ के सिस्टम में है और वहां पे होनी चाहिए? इस सिस्टम को कैसे आप देखते हैं, दोनों सिस्टम्स को, अगर आप मुवाजना करें?
बड़ा अच्छा और रेलेवेंट सवाल है आपका। एक बात तो यह है कि मेरे वालिद साहब ने 33 ईयर्स, उन्होंने 33 साल सर्विस की, फिर वो रिटायर हुए, 33 या 34 मे बी, बट इन दैट एरिया। तो मेरा गोल था कि मैं इनको को 2 साल से बीट करूंगा इंशाल्लाह, एंड आई डिड इट। दादा भी पुलिस में थे, उनको मैंने हाजिर सर्विस नहीं देखा, ही वाज रिटायर्ड। तो दोनों माशाल्लाह जन्नत में चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। जहां तक कंपेयर करते हैं आप ऑस्ट्रेलियन पुलिस को और यहाँ हमारी पाकिस्तानी पुलिस को, जमीन आसमान का फर्क है। हर एरिया में सैलरीज उनकी जो हैं वो नाकाफी हैं, उसके बाद जो उनको इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, जो उनको फैसिलिटी दी हुई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, चाहे वो पेट्रोलिंग वाले हैं या दफ्तरों में बैठे लोग हैं, उनको जो आप अवेल करा सकते हैं टेक्नोलॉजी और जो टूल्स उनको आप दे सकते हैं आज के दौर में, जबकि हर क्रिमिनल जो है वो स्मार्ट है, वो जब तक नहीं इनको मिलेंगे बेचारों को, इनके साथ ज्यादती है। तनख्वाह तो चलो जैसा भी है, कुछ उनको इंसेंटिव होना चाहिए, क्योंकि आप जिस हिसाब से उनसे ड्यूटी लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, कि बंदा सुबह 6 बजे गया जनाब, रात के 2 बजे वापस आ रहा है घर, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, और जो इजाफी वो काम करेंगे उनका कुछ अलाउंस या बोनस वगैरह भी उन्हें नहीं मिलता। दूसरा, जो उनके पास टूल्स हैं वो पिछली सदी वाले हैं, वो अब वो दौर नहीं रहा। क्रिमिनल जो है वो ज्यादा डिफरेंट तरीके से सोचता है और स्मार्ट हो गया हुआ है। उनको टैकल करने के लिए हमारी पुलिस को भी उसी लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए जो यहाँ पे अगर मिल जाए। ये लोग हमारे से, हम लोगों से ज्यादा मेहनती हैं। एक बंदा उसको आप चौक में खड़ा कर रहे हैं, मुलजम लेके जा रहा है, मुलजम लेके आ रहा है, सारा दिन वो 10 बंदों को कड़ी मार के वो बैठा हुआ है, ना पानी ना खाना, वो मस्कीन का तो आपने वैसे ही शनाशन कर दिया। लेकिन मेहनती लोग हैं, इनको अगर हम इक्विप करें बेटर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ, इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, दुनिया के बेहतरीन पुलिस फोर्स पाकिस्तान की है, आई हैव टू से दैट। हमारे वहां पर जहां से हम करते रहे, तो गवर्नमेंट अमीर है, हर चीज आप एक मांगे 10 पड़ी है। तो और वो जो कॉपरेशन, हाँ एक जरूरत यहाँ पे और भी है कि जो पुलिस और अवाम के दरमियान जो गैप है, एक ट्रस्ट डेफिसिट कह लें जिसे, तो पुलिस वाले को देख के पब्लिक को डरना ही चाहिए कि वही अगे पुलिस खलोती है ना। पुलिस वाले को देख के तो अवाम को ये होना चाहिए कि यार वहां पे एक मददगार आदमी खड़ा है, दिस इज व्हाट पुलिस इज। वो एलिमेंट इनका दूर हो जाएगा बड़ी आसानी से, आप इन्हें फैसिलिटेट करेंगे, इनकी जरूरियात का ख्याल रखेंगे, इनकी तनख्वाहें मकबूल होंगी, दे बी ए बेटर प्लेस। और जहां पे आप बैठे हैं और मैं सर्विस कर के हूँ, वो तो बादशाह कंट्री है, आपको पता है, फंड्स अवेलेबल हैं, एवरी नीड फ्रॉम अ नीडल टू एन एयरक्राफ्ट वो आपको सप्लाई करते हैं. अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको वो ओवर टाइम भी वहां पे मिलता है, तो आपकी पूरी दिलचस्पी और पूरी स्ट्रगल के साथ यू परफॉर्म बेटर.
अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्योंकि डिटेल जानना चाह रहे थे कि कई लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान से भी देखेंगे, ये बताइएगा कि क्या क्या चीजें, एक फॉर एग्जांपल आप एक कांस्टेबल थे तो किस किस चीज तक एक्सेस होती है, जैसे जैसे कब आप बता रहे हैं कि नंबर प्लेट से आप जो है वो मुलजिम की शनाख्त, या मुलजिम ना भी हो किसी भी शख्स को रोकने से पहले आप उसके बायोडाटा तक पहुंच चुके होते हैं, या किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले जो है आपके पास ये चीज आपको मालूम होती है कि इस बंदे के नाम पे कितने फायर आर्म्स वगैरह रजिस्टर्ड हैं। क्या ये चीजें मुमकिन है ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में, और इसी तरह की चीजें पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसर सा।
देखिए, ऑफ कोर्स के पाकिस्तानी पुलिस किसी से पीछे नहीं है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी का जो लेवल है ना, एक बंद कमरे में एक हाई रैंक जो पोजीशन होल्डर है या ग्रुप है बंदों का, दे मे हैव एक्सेस, उनके पास इसकी होगी, एक्सेस होगी इन चीजों की. वो चीजें जो सड़क पे ड्यूटी कर रहा है उसके पास नहीं है, और जो एक कांस्टेबल का रैंक है, जो पावर्स उस कांस्टेबल के पास हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, वो कमिश्नर तक वही है, फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम अ कांस्टेबल ऑल द वे टू द टॉप रैंक. उसमें ये नहीं है कि जो जिमनी लिखनी है वो एएसआई साहब लिखेंगे, या जो चलान करना है वो कोई और साहब करेंगे. वो पावर्स जो है ना, वो जो थ्रेशोल्ड दिया गया उसको खत्म करना होगा. आप एक पुलिस वाले हैं, जो सिस्टम मैंने देखा है, जिसको मैंने फॉलो किया है, इजी वन. आपने कोई जुर्म देखा है एज ए कांस्टेबल, आप उसको पकड़ेंगे, गवाही सारा जो केस है पूरा वो आप कंपाइल खुद करेंगे, उसके नताज के आप खुद जिम्मेदार होंगे. ये नहीं कि मैंने पकड़ लिया और किसी और को दे दिया, वो छड़े बंदे तक जाएगा फिर जाके फाइल आगे निकलेगी, नहीं, ये चीज नहीं है. जो बंदा किसी जुर्म को डिटेक्ट करता है, टच करता है, वो उसकी उसकी फॉलो अप उस बंदे के जुम्मे है, ऑल द वे टू द कोर्ट. कोर्ट तक वो प्रोसीड करेगा, उसके पीछे जाएगा, परसू करेगा. नहीं, ये चीजें यहाँ पे पुलिस वाले जो है, कांस्टेबल को कुछ थोड़ी सी अथॉरिटी है, उसके बाद ऊपर रैंक सो ऑन, रेड टेप है, इसको खत्म कीजिए. एक काम जो पुलिस वाला है उसका भी वही इख्तियार होना चाहिए जो आईजी डीआईजी साहब का है. महकमा एक फकत एक महकमा है पुलिस का, ये ठीक हो जाए सारा मुल्क, सारा मुआशरा ठीक हो जाएगा.
इसमें अख्तियारात के बारे में आपने जो जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया में एक कांस्टेबल के पास क्या क्या अख्तियारात होते हैं वो थोड़ा सा बता दीजिएगा, जो मैंने थोड़ा पहले भी जिक्र किया था, अगर आप उनको आप खुद बता देंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो उसके पास होती हैं तो।
अच्छा, टूल्स के मामले में हर जो ऑफिसर है, पेट्रोलिंग पे है या अदरवाइज है, हम सबको ऑप्शन है कि हम आईपैड पास रख लें या आईफोन पास रख लें महकमे की तरफ से. हर बंदे को वो एक मिला होता है. उसमें सिस्टम्स ऐसे हैं, एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि वो डायरेक्ट एक्सेस जो पुलिस सिस्टम की है, हम वो हैंड हेल्ड जो पकड़ा हुआ है हाथ में, उससे वो हम कर लेते हैं. मसलन गाड़ी का चेक है, कोई गाड़ी आगे जा रही है तो आप उसका नंबर फीड करेंगे, ओनरशिप बंदा कौन है, मालिक कौन है, रिहायश कहाँ पे है, लेटेस्ट उसकी फोटो, असला लाइसेंस, और किस टाइप का बंदा है, वो सारा. तो इससे पहले कि हम गाड़ी वाले से कहें कि गाड़ी रोक, हमें पता होता है कि इसमें प्रोबेबली इसको जो ओनर है वो है इसमें, और वो कौन है, किस काबिल है. बंदे आप किसी से को बात कर रहे होते हैं तो हमको ये नहीं होता कि हम इसको पहले उठा के थाने लेके जाएं तो फिर पता करें कौन है, उसका नाम पता उसमें डालें या डेट ऑफ बर्थ डालें. सो यू हैव हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग एक्सेसिबल ऑन योर फिंगर टिप्स. शायद हमारे मुल्क में इतना वो वसाइल ना हो कि ये अवेल कर सकें, लेकिन इसे हैंडी टूल, इसको ऊपर लेवल पे रखने के डब्बे में बंद करने के बजाय अगर है ये फैसिलिटी तो अपने नीचे स्टाफ को आप दें. तो ये जो चीजें हैं ना, और जो एक आम हाई रैंकर जो होता है उसको जो इख्तियारात हैं कानून ने दिए हुए, वही इख्तियारात पुलिस ऑफिसर, हर एक पुलिस ऑफिसर को देने होंगे. जो पकड़ता है जुर्म को वो शुरू से लेके आखिर तक वही तफ्तीश करे, ताकि अगर उसके जो नताएज अच्छे बुरे जो भी हों वो उसके जुम्मे में आए.
बहुत शुक्रिया गुलाम आबाद साहब SBS से बात करने के लिए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।